हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 61. हर्षिता घर वापस आ गई, लेकिन उसका ध्यान अभी भी समर में अटका हुआ है। जिस तरह से समर ने एक अनजान होते हुए भी उसकी मदद की, वो समर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। और फिर वहां पर पूरी तरह उसने उसे प्रोटेक्ट किया और उसके साथ ही वहां कैफे से बाहर निकल कर आया और उसे अपने सामने ही टैक्सी में बिठाया और फिर बाद में वहां से गया। समर के बारे में अपने मन में सोचते हुए हर्षिता घर के दरवाजे से हॉल में आई। कोई लड़का इतना अच्छा और स्वीट कैसे हो सकता है? मुझे तो ज्यादातर ऐसे क्रीप्स और छिछोरे लड़के ही मिलते हैं हमेशा से, और इस लड़के के अलावा आज तक किसी ने बेवजह मेरी मदद नहीं की। सारा दिन ऑडिशन की लाइन में लगे रहने की वजह से वो काफी ज्यादा थक गई है, इसलिए वो वहीं हॉल के सोफा पर ही बैठ गई। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उस पर अगले दिन के लिए ऑडिशन टाइमिंग देखने लगी, क्योंकि वो अगले दिन जल्दी जाना चाहती है जिससे कि ऑडिशन के लिए उसका भी नंबर आ जाए और उसे टॉप 50 मॉडल में सिलेक्ट कर लिया जाए जिससे कि वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। वो किसी भी हालत में ये मौका छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से अपने घर वालों को इस बात के लिए राजी करके यहाँ तक आई है और आधे लोगों को तो इस बारे में पता भी नहीं है। उसने समर से उसका नंबर भी मांगा था, लेकिन समर ने अपना नंबर देने से मना कर दिया और साथ ही हर्षिता को इतनी लेट तक अकेले बाहर रहने से भी मना किया। हर्षिता को लगा कि जरूर वो कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए फिर हर्षिता ने दोबारा उससे इस बारे में बात नहीं की और उसने सोचा कि वो शिविका से इस बारे में बता देगी जो कुछ भी आज हुआ। तभी उसने घर की मेट को बुलाकर शिविका और बाकी सबके बारे में पूछा तो उसे पता चला कि शिविका अभी तक घर पर ही नहीं है। हाँ, उसके मामा जी जरूर अपने रूम में थे, लेकिन हर्षिता उनसे बात करने मिलने नहीं गई क्योंकि वो उनके इतना क्लोज नहीं है और वैसे भी फिलहाल वो अपने मतलब और फायदे के लिए ही यहाँ पर रह रही है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ करे जिससे किसी को डिस्टर्ब होगा या उनकी प्राइवेसी में और फिर वो लोग उसे उसके घर वापस भेज दे। ये सब सोचते हुए हर्षिता वहां पर बैठी है, तभी उसका ध्यान दरवाजे की तरफ होता है जहां से किसी के अंदर आने की आहट होती है और वो समझ गई थी कि जरूर शिविका ही वापस आई होगी, लेकिन जिस तरह से उसने शिविका को घर के अंदर आते देखा उसकी तो आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। हर्षिता ने सामने देखा तो करण अपनी गोद में उठाकर उसे दरवाजे से अंदर ला रहा था और उसे करण की गोद में देखकर हर्षिता ने हैरानी से अपना मुंह खोले हुए ही पूछा, क्या हुआ दी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लग गई पैर में? वैसे आप डॉक्टर के यहाँ गई थी क्या इस तरह से? हर्षिता को वहाँ पर देखकर शिविका एकदम ही एम्बैरस्ड फील करते हुए अपने चेहरे पर एक हाथ रखकर करण को लगभग डांटते हुए बोली, करण नीचे उतारो मुझे, देखा मैं कह रही थी ना तुमसे कोई ना कोई देख लेगा और बोल रहा था कि मैं ऐसे सहारा लेकर भी चल सकती हूँ, लेकिन तुम सुनते नहीं हो मेरी। इतना बोलते हुए शिविका ने उसकी बांह पर हल्के से मारा तो करण ने भी सोफे के पास आते आते उसे उतार कर सोफे पर बैठा दिया और नाराज होने वाला मुंह बनाकर बोला, ये सही है, एक तो मदद करो और ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। शिविका करण की बात का जवाब देते हुए बोली, अरे लेकिन बार बार इस तरह से मदद? शिविका अपनी बात पूरी चर पाती उससे पहले ही उसकी नज़र वहां पर उन दोनों के बीच खड़ी हर्षिता पर पड़ी जो कि उन दोनों की ही बातें सुन रही है, तो फिर शिविका ने भी आगे कुछ नहीं बोला और बात बदलते हुए हर्षिता से पूछा, और हर्षिता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा तो आज ऑडिशन था ना, सिलेक्ट हो गई क्या? हर्षिता ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं दी, इतना ईजी कहाँ होता है सब कुछ। दरवाजे की तरफ से एक और आवाज आई, हाँ लेकिन कुछ लोग इजी समझकर चले जरूर आते हैं मिस यूनिवर्स बनने। वो आवाज आते ही करण, शिविका और हर्षिता तीनों ने उस तरफ देखा तो ऋषभ अब तक वहां पर हॉल में आ गया था और उसने शायद शिविका और हर्षिता के बीच की बातें भी सुन ली। करण वहां पर चुपचाप खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे फैमिली के बीच वो क्या बोले, इसलिए उसने शिविका से कहा, मैं काव्या से मिलकर आता हूँ जाने से पहले। करण के बात पर शिविका ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और करण वहां हॉल से आगे आता हुआ सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ गया और उसके पीछे हर्षिता ने ऋषभ की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैंने बिल्कुल भी इजी नहीं समझा है इस कॉम्पिटिशन को, मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन मुझे भी डिफिकल्ट चैलेंजेस का सामना करके ही खुद को प्रूफ करना है। हर्षिता की बात सुनकर ऋषभ ने बहुत ही लापरवाही से कहा, हाँ हाँ और कहने करने में बहुत फर्क होता है, कोई बात नहीं कुछ दिन रुको ये भी समझ में आ जाएगा, और अपनी बात बोलते हुए वो आराम से सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। उसके बातें सुनकर हर्षिता का मुंह बन गया। वो आज पहले ही काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही है, क्योंकि आज ऑडिशन में उसका नंबर नहीं आया और उसके बाद वो खाना खाने के लिए गई रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर वो छिछोरे लड़के उसके पीछे लग गए और ऊपर से अब ऋषभ की ये ताने भरी बातें सुनकर उसका मूड और भी खराब हो गया है। हर्षिता आखिर रुआंसी होते हुए बोली, ऋषभ भाई, आपको आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, जो हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं? इतना बोलते हुए हर्षिता अपने आंसू रोकने की कोशिश करती हुई वहाँ साइड में अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठ गई। हर्षिता को इस तरह से देखकर शिविका को भी उसके लिए बुरा लगा, और एक लड़की होते हुए वो लड़कियों की परेशानी काफी अच्छे से समझ सकती है। उसे पता है आखिर हर्षिता कितने लोगों से लड़ झगड़ कर यहाँ पर आई होगी अपने सपनों के लिए, और ऐसे में उसे कोई तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से ऋषभ उसे ये सब बोल रहा है। ऋषभ ये सारी चीजें ऐसे बोल रहा है जैसे कि उसने लाइफ में बड़ा कुछ स्ट्रगल किया हो और उसे बड़ा एक्सपीरियंस है, जबकि असल में तो वो खुद भी कुछ नहीं करता। वो अलग बात है कि शिविका उसे इतना प्यार करती है और फिर भी उसे किस चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। लेकिन अभी उसने हर्षिता को जो कुछ भी बोला ये सुनकर शिविका को बुरा लगा। भले ही ऋषभ उसका भाई है, लेकिन फिर भी उसने ऋषभ को ही डांटते हुए कहा, क्या है ऋषभ, ये किस तरह का बिहेवियर है? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? हर्षिता से माफी मांगो तुम। ऋषभ मुंह बनाते हुए बोला, अरे माफी, लेकिन किस बात की दी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसे, ये खुद ही कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है आपके सामने बेचारी बनने का। ऋषभ की बात सुनकर हर्षिता जल्दी से सफाई देते हुए बोली, नहीं दी, मैं कोई नाटक नहीं और मुझे नहीं चाहिए किसी की कोई माफी। शिविका हल्के से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ हर्षिता, मुझे पता है तुम कोई नाटक नहीं कर रही, लेकिन ऋषभ ने अभी अभी जो कुछ बोला है ना, इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए ऋषभ, इसलिए जल्दी से माफी मांगो और साथ ही ये भी प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा इस तरह से बुरा नहीं बोलोगे उसे कुछ भी। ऋषभ ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन दी, शिविका ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, ऋषभ, जस्ट से सॉरी। ऋषभ ने मुंह बनाकर बेमन से कहा, ओके फाइन, सॉरी हर्षिता। ऋषभ का सॉरी सुनकर हर्षिता को कोई बहुत प्राउड फील नहीं हुआ, या फिर उसने कोई जंग नहीं जीत ली, फिर भी उसने थोड़े कॉन्फिडेंस से बोला, इट्स ओके ऋषभ भाई, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, आपके जैसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, और आपको नहीं पता मैं किन किन लोगों से लड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ और इसके आगे भी जाऊँगी।
ऋषभ उसी तरह लापरवाही से बोला, हाँ हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बट मैं बहुत थका हुआ हूँ दी, बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर वो चिड़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे से शिविका ने आवाज लगाई, अरे लेकिन ऋषु, मुझे तुझसे ऑफिस के बारे में। शिविका अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही ऋषभ उसकी बात सुने बिना ही गुस्से में वहां से चला गया, क्योंकि आज पहली बार शिविका ने उसके सामने किसी और की साइड ली और उसे छोड़कर किसी और को सपोर्ट किया, इसलिए ऋषभ को थोड़ा बुरा लग रहा है और वो इस बात को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। शिविका भी कहीं न कहीं इस बात को समझ गई कि नहीं, सबको बुरा लगा है, लेकिन अपने पैर की वजह से इस वक्त वो तुरंत ही उसके पीछे नहीं जा पाई। दूसरी तरफ करण ऊपर काव्या से मिलने उसके कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि ज्योति हाथ में खाने की प्लेट लेकर काव्या को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन काव्या जिद करते हुए अपने दोनों हाथ सामने बांधकर मुंह फुलाकर बैठी है और दूसरी तरफ देख रही है। ज्योति चम्मच काव्या के चेहरे के सामने करते हुए बोली, खाना खा लो बेबी, नहीं तो मैडम गुस्सा करेंगी मेरे ऊपर और तुम्हें भी डांट पड़ेगी। काव्या ने जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, कहीं मम्मा को बुलाओ, मैंने उन्हें कितनी देर से नहीं देखा है। दरवाजे की तरफ से आवाज आई, अच्छा तो सिर्फ अपनी मम्मा की याद आ रही है, मेरी नहीं। करण की आवाज सुन काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए खुशी से कहा, करण। इतना बोलकर वो अपनी छोटी कुर्सी से उतरकर दरवाजे की तरफ भागी। करण भी जब तक मुस्कुराते हुए चलकर थोड़ा सा आगे आया और काव्या उसके पैरों से लिपट गई। उसे देखकर वो सच में बहुत ज्यादा खुश हो गई है। काव्या को इस तरह से खुश देखकर करण ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर हल्का सा झुकते हुए बोला, हाँ तो बताओ, अब सिर्फ मम्मा की ही याद आती है ना, मैं भी तो इतनी देर से यहाँ पर नहीं था, मुझे याद नहीं किया ना तुमने बेबी, और क्यों परेशान करती हो ज्योति दीदी को, चुपचाप खाना क्यों नहीं खाती तुम टाइम से। करण की बात सुनकर छोटी सी काव्या ने अपनी गर्दन पूरी ऊपर उठाकर करण के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं करण, काव्या को तुम्हारी भी याद आती है, आई मिस यू, बट मुझे मम्मा के हाथ से ही खाना खाना पसंद है, और अभी मम्मा कहाँ है, वो तुम्हारे साथ नहीं थी क्या? एक बार में काव्या के इतने सारे सवाल सुनकर करण ने उसे झुककर अपनी गोद में उठा लिया और बोला, नीचे है तुम्हारी मम्मा, तुम्हें पता है ना उनके पैर में चोट लगी है, तो फिर गुड गर्ल की तरह उन्हें ज्यादा परेशान मत करो और कुछ दिन ज्योति दीदी के हाथ से ही खाना खा लो, वो भी तो तुम्हें कितना प्यार करती है ना। करण की बात समझते हुए काव्या ने हाँ में सिर हिलारा और फिर करण ने उसे नीचे उतार दिया और ज्योति उसे खाना खिलाने लगी और काव्या ने पूरा खाना खा लिया। करण तब तक वहाँ पर उसके पास ही रुका रहा और मुस्कुलाते हुए प्यार से उस बच्चे की तरफ ही देख रहा है। पता नहीं क्यों उसे उस बच्चे से एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। क्रमशः